दिन भर 16 जनवरी दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फदल। चुनाव आयोग ने कहा साइकिल चुनाव चिन्ह अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के पास। पार्टी के नेता राम गोपाल यादव,
मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को करोड़ों लोगों की दुआएं भी मिलेंगी। बहुत ही सही और न्याय संगत फैसला चुनाव आयोग ने दिया है।
यौन अपराधियों की दिमागी सोच पर बात करेंगे अपराध मनोवैज्ञानी अनुजा कपूर से।
जो पेडोफाइल है हमारी सोसाइटी के अंदर से पनपता है, वो खुद एक विक्टिम रहा होता है जो एक ऑफेंडर बन जाता है।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। समाजवादी पार्टी में जारी तकरार के बीच चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के धड़े के पक्ष में फैसला सुनाया है। चुनाव आयोग ने पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर भी अखिलेश पक्ष के दावे को सही ठहराया है। मुलायम सिंह यादव के गुट ने भी आयोग के सामने चुनाव चिन्ह पर दावा किया था। चुनाव आयोग के फैसले को मुलायम सिंह धड़े के लिए झटका माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 149 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में उन विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम हैं जहां पहले दो चरणों में मतदान होना है। पहले चरण की वोटिंग 11 और दूसरे चरण की वोटिंग 15 फरवरी को होगी। उत्तर प्रदेश में कुल 7 चरणों में चुनाव होंगे। परमाणु हथियार कम करने से जुड़े समझौते को लेकर अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर रूस ने कहा है कि अभी इस पर प्रतिक्रिया देना जल्दीबाजी होगा। ट्रंप ने समझौते की स्थिति में रूस पर लगे प्रतिबंधों को वापस लेने की बात की है। रूस की संसद के ऊपरी सदन में विदेशी मामलों की समिति के प्रमुख कॉन्स्टांटिन कास्चोव ने कहा कि प्रतिबंधों से मुक्ति के लिए सुरक्षा से समझौता करना उपयोगी नहीं होगा। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, हमें धीरज रखना होगा और श्रीमान ट्रंप के राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभालने का इंतजार करना होगा। उसके बाद हम किसी भी पहल का आकलन कर सकते हैं। ये थे दिमित्री पेस्कोव के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मनी के वाइस चांसलर जिगमाल गाब्रियल ने कहा है कि मध्य पूर्व में अमरीका के लापरवाही भरे हस्तक्षेप की वजह से ही प्रवासी संकट खड़ा हुआ है। गाब्रियल का बयान अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि साल 2015 से जर्मनी में 10 लाख से ज़्यादा प्रवासियों को आने देना विनाशकारी गलती थी। उन्होंने ट्रंप के उस बयान की भी आलोचना की जिसमें निर्वाचित राष्ट्रपति ने कहा है कि मैक्सिको में बनने और अमरीका में बिकने वाली जर्मन कारों पर भारी आयात शुल्क लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर अमरीकी बेहतर कार बनाते तो वहाँ जर्मनी की कारें कम लोकप्रिय होती। तुर्की का एक कार्गो विमान किर्गिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई। राजधानी बिश्केक के करीब गांव में विमान का मलबा बिखर गया। हादसे में 15 घरों और कई कारों को नुकसान हुआ। सरकार ने मंगलवार को एक दिन के शोक का ऐलान किया है। चीन में फुटबॉल से जुड़े अधिकारियों ने देश में होने वाली सुपर लीग में विदेशी खिलाड़ियों की संख्या पर पाबंदी लगा दी है। नए सीजन में एक वक्त में मैदान पर सिर्फ 3 विदेशी खिलाड़ियों को उतरने की इजाज़त दी जाएगी। पिछले सीजन में 4 विदेशी खिलाड़ियों के साथ एक एशियाई खिलाड़ी को भी मैच में हिस्सा लेने की इजाज़त थी। चीन के क्लब में विदेशी खिलाड़ियों पर बड़ी रकम खर्च की जा रही है। सरकारी मीडिया में खिलाड़ियों की नियुक्ति को लेकर क्लबों की आलोचना होती रही है। चाइना क्लब फुटबॉल के चेयरमैन रोआन सिमंस ने कहा कि नई नीति सही दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा,
It's a very good move in terms of reining in the ridiculous spending.
बेतहाशा खर्च को काबू करने के लिए एक अच्छा कदम है, लेकिन अगर आप चीन आने वाले खिलाड़ियों की संख्या देखें तो ये काफ़ी कम है। इसका भुगतान करने वाले क्लबों की संख्या भी काफ़ी कम है, लेकिन खास खिलाड़ियों को लाने में अरबों डॉलर चीन के बाहर जा रहे हैं और ये यहाँ खेल की प्रगति के हित में नहीं है। ये थे रोआन सिमंस के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया के सशस्त्र विपक्षी समूहों ने कहा है कि वो सरकार के साथ शांति वार्ता में हिस्सा लेंगे। ये बातचीत एक हफ्ते के दौरान होने वाली है। जैश अल इस्लाम के मोहम्मद आलोश ने कहा कि वो विद्रोहियों के प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई करेंगे। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। चुनाव आयोग ने कहा है कि साइकिल चुनाव चिन्ह समाजवादी पार्टी के अखिलेश धड़े के साथ ही रहेगा। चुनाव आयोग ने अभी थोड़ी देर पहले यह फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की चुनावी प्रक्रिया के तहत नामांकन दाखिल करने में काफी कम समय बचा है, ऐसे में यह फैसला अखिलेश यादव के लिए बेहद राहत की खबर है। यह फैसला मुलायम सिंह यादव के लिए एक बड़ा झटका है। राज्य में 7 चरणों में मतदान होंगे। मतदान 11 फरवरी से शुरू होगा। इस समय हमारे साथ हैं बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव। नितिन, बताइए क्या विवरण है आपके पास?
रेहान साहब, बहुत बड़ा फैसला है, खासतौर से समाजवादी पार्टी की जो अंदरूनी राजनीति है उसके लिए और उत्तर प्रदेश का जो अब आगामी विधानसभा चुनाव वाले हैं आने वाले हैं उनके लिए। जो सबसे खास बात है वो ये है कि जो चुनाव आयोग ने अभी अभी कुछ देर पहले जो अपनी रिलीज जारी की है, जो उन्होंने फैसले को जारी किया है, उसमें 2-3 चीज़ें ये बताती हैं, ये दर्शाती हैं कि ये फैसला लेने में चुनाव आयोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। चुनाव आयोग ने अपने कई पन्नों का जो लंबा अंग्रेजी में ऑर्डर आया है उसमें उन्होंने जो प्रमुख बातें बताई, उसमें एक खास बात ये कि उन्होंने जो पुराने सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामले गए हैं कभी निपटारे के लिए, आपसी विवाद चुनाव चिन्हों को लेकर, उन्होंने उनके हवाला दिया है। उन्होंने कोर्ट के पुराने जजमेंट्स को कोट किया है और उन्होंने इस बात पर आकर निष्कर्ष निकाला है कि दरअसल अखिलेश यादव का जो गुट है, जो उनके चाचा रामगोपाल ने उनकी तरफ से जो एफिडेविट दिलवाए थे सारे 200 से ज़्यादा विधायकों और सांसदों के, उनके पास ज़्यादा सपोर्ट है, ज़्यादा समर्थन है और रामगोपाल यादव की एक तरह से जो खुशी है वो उनके इस बयान से जाहिर भी होती है।
मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को करोड़ों लोगों की दुआएं भी मिलेंगी। बहुत ही सही और न्याय संगत फैसला चुनाव आयोग ने दिया है। उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के लोग जहाँ भी हैं उनके 95% लोग अखिलेश और समाजवादी पार्टी के पक्ष में थे, तो इस फैसले से हमारी पूरी पार्टी खुश है।
तो रेहान साहब, जैसा रामगोपाल यादव कह रहे थे, खुशी का इजहार है अखिलेश के कैंप में, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि समर्थन ज़्यादा अखिलेश यादव के पास था, अपने विधायकों का और अपने सांसदों का और बड़े नेताओं का। भले आजम खां के किस तरह के वरिष्ठ नेता बीच में बीच बचाव सुलह करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरे स्तर पर एक तरह से मुलायम सिंह पिछले कुछ दिनों में, जब से ये मामला एक तरह से न्यायिक उसमें आया था और चुनाव आयोग के पास गया था, थोड़े कमज़ोर भी दिखने शुरू हो गए थे।
आइए सीधे चलते हैं लखनऊ, समीर आत्मज मिश्र के पास। समीर संभवतः समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के पास खड़े हुए हैं। समीर, बताइए इस फैसले को किस तरह से लिया गया है उत्तर प्रदेश में?
जी रेहान साहब, मैं इस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के घर के बाहर ही खड़ा हूं और यहां पे कुछ उस तरह का लोगों में जश्न दिख रहा है, खुशी दिख रही है, जैसे ये चुनाव आयोग से सिंबल का चुनाव, सिंबल की जीत नहीं हुई है, सिंबल पाने की जीत नहीं हुई है, जैसे ये चुनाव जीतने की खुशी यहाँ दिखाई दे रही है। बहुत से लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, शायद आप बैकग्राउंड में नारे भी सुन रहे होंगे। हालांकि अभी कुछ देर पहले यहाँ अनाउंसमेंट की गई, जो सुरक्षा कर्मी है, पुलिस वाले हैं, वो लगातार लोगों को ये समझा रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता लागू है, आप लोग नारेबाजी न करें, यहाँ भीड़ न लगाएं। लेकिन लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं और सभी लोग, जैसा कि एक चीज हमने ये भी देखा था कि सुबह जब मुलायम सिंह यादव पार्टी दफ्तर गए थे तो उस समय भी उन्होंने बाहर वो निकले थे, लेकिन उस समय भी अखिलेश यादव के समर्थन में ही नारे लग रहे थे। तो यानी लगभग लोग ये मान रहे थे या मान करके चल रहे थे कि शायद चुनाव आयोग जो है ये फैसला या तो अखिलेश यादव के ही पक्ष में देगा या फिर वो साइकिल निशान को फ्रीज कर देगा, किसी को देगा नहीं।
तो लेकिन सुबह बहुत गहमा गहमी थी, उन्होंने नाम पट्टिका उसके नीचे लगा दी, दोनों कैंप आपस में भिड़े हुए थे सुबह तक।
जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सुबह यहाँ पे आज बहुत सारे कार्यकर्ता जुटे हुए थे, वो शायद फैसले का लोगों को पहले यही पता था कि 11-12 बजे चुनाव आयोग अपना फैसला देगा, लेकिन मुलायम सिंह यादव जब सुबह आए यहाँ पार्टी में, जो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना दफ्तर है, कमरा है, वहाँ गए, वहाँ कुछ कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत की और कहा यह गया कि अखिलेश यादव को उन्होंने तमाम खरी खोटी सुनाई कि मेरी बात नहीं सुनते हैं, कुछ लोगों के बहकावे में है। कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद मुलायम सिंह यादव वापस आ गए, लेकिन जब वो गए और वापस आए तब भी लोगों ने, जो कार्यकर्ता थे अखिलेश के समर्थन में नारे लगा रहे थे, और मुलायम सिंह के जाने के बाद उसका परिणाम ये हुआ कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मुलायम सिंह यादव के नाम की पट्टी लगी हुई थी उसके ठीक नीचे अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की पट्टी लगा दी गई। तो इसको एक तरह से मुलायम सिंह यादव की प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया और जो कार्यकर्ता थे वो सारे जिस तरह से अखिलेश के समर्थन में नारे लगा रहे थे तो लोग ये मान करके चल रहे थे कि अब पार्टी का नेतृत्व अखिलेश यादव के ही हाथ में है और जिस पर चुनाव आयोग ने भी अपनी एक तरह से पुष्टि कर दी है, मोहर लगा दी है।
इस बीच वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी भी हमसे जुड़ चुके हैं। रामदत्त जी, सबसे पहले तो ये बताइए क्या असर पड़ेगा इस फैसले का आपकी नजर में आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर?
देखिए, सबसे ज्यादा असर तो समाजवादी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई पे पड़ेगा और अखिलेश यादव जाहिर है कि समाजवादी पार्टी के अंदर वो विजयी होकर निकले हैं और उनको अब गांव-गांव और घर घर जो चुनाव निशान पहुंचाने में दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात ये भी है कि अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी इंतजार कर रही थी कि चुनाव आयोग का ये जो निर्णय होगा उसके बाद वो जो अखिलेश यादव से गठबंधन की चर्चा है तो उस पर भी कोई निर्णय अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिल करके ले सकते हैं, ये भी बात चल रही है कि शायद लोक दल भी उस गठबंधन में शामिल हो। तो एक तरह तो ये है, लेकिन अभी ये देखना है कि मुलायम सिंह यादव इस फैसले के खिलाफ क्या निर्णय लेते हैं। अभी ये पता चला है कि उनके घर पर शिवपाल यादव भी गए हैं और अखिलेश यादव भी शायद जाने वाले हैं। अगर मुलायम सिंह यादव कोर्ट चले गए तो मामला फिर कोई पेचीदगी में फंस सकता है, अन्यथा अखिलेश यादव का पलड़ा इस समय भारी दिख रहा है समाजवादी पार्टी की लड़ाई में और मुलायम सिंह यादव को ये तय करना है कि अब वो इसको मानेंगे या फिर वो जैसा कि लोकदल पुराने लोकदल के साथ उनकी बातचीत चल रही थी उसके साथ मिल करके, क्योंकि आज उन्होंने संकेत दिया था कि मैं बेटे के खिलाफ भी चुनाव लड़ सकता हूं, तो अभी ये कहना मुश्किल है कि वो इसको स्वीकार कर लेंगे या नहीं स्वीकार करेंगे।
ये बताइए ये खबर बीजेपी के लिए कितनी परेशान करने वाली खबर है?
हाँ, बीजेपी के लिए तो जरूर परेशानी की खबर है क्योंकि बीजेपी ये चाहती थी कि पार्टी एक तरह से टूट जाए और ये फैसला जिस तरह से चुनाव आयोग ने दिया है तो उन्होंने ये मान लिया है की पूरी समाजवादी पार्टी है अखिलेश यादव की, उनको चुनाव निशान भी दे दिया है, तो अब लड़ाई काफी दिलचस्प होगी, उतना आसान नहीं होगी क्योंकि बीजेपी ये भी देख रही थी कि अगर साइकिल निशान जब्त हो जाता है तो शायद समाजवादी पार्टी के कुछ लोग और बड़े नेता उनके साथ आ जाएं, तो अब उसकी भी संभावना थोड़ा कम हो जाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका रामदत्त त्रिपाठी।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस पर कड़ा हमला करते हुए कहा है कि वो तिरंगे का सम्मान करना जानता ही नहीं और उसके नागपुर मुख्यालय में आजादी के 52 साल बाद तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया था। उत्तराखंड में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। ऋषिकेश में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने हमलावर तेवरों का मुजाहरा किया और चुटकी ली कि अगले दशहरे में तो रावण को मारने के लिए राम को मोदी का मास्क पहनना होगा। कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के बदले बदले तेवरों से खासे उत्साहित हैं। देहरादून से शिव जोशी की रिपोर्ट।
तो मैं देखता हूँ कि भैया मेरा यहाँ बकेट फटा है, ये मेरा कुर्ता फटा है, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता।
मंच से बाकायदा एक कोने से फटा अपना कुर्ता पार्टी कार्यकर्ताओं को दिखाते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ये बात कही। ऋषिकेश में पार्टी कैडर को संबोधित करते हुए राहुल ने चुन चुन कर प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस पर निशाना साधा। खादी आयोग के कैलेंडर में मोदी की तस्वीर पर तंज कसते हुए राहुल ने कहा कि अब आने वाले दशहरे में राम मोदी का मास्क पहनकर रावण को मारने आएंगे। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी गांधी की तस्वीर नहीं उनके विचारों को बदलना चाहते हैं।
मंत्री कहता है मोदी जी गांधी जी से बड़े ब्रांड है, अब देखिए यहाँ सीने में 3 गोली खाई, इस झंडे को यहाँ फहराने के लिए उसको नरेंद्र मोदी जी ने परे कर दिया, कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं और नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट।
राहुल के लगातार तीखे होते तेवरों और भाषणों और बयानों में आ रही आक्रामकता से कांग्रेसी कार्यकर्ता फूले नहीं समा रहे। लेकिन आम लोग राहुल के इस नए अवतार पर क्या कहते हैं, सुनिए अनिल रावत को।
राहुल गांधी को तो जो है पार्टी की बागडोर अब संभालनी चाहिए, क्योंकि अभी उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और इसी आत्मवत्ता के साथ जब वो डिसीजन लेंगे तभी कांग्रेस पार्टी में कुछ सुधार होगा और पार्टी अपना खोया बेस जो है वो वापस पा सकती है।
प्रेक्षक भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने अपनी भाषण शैली और मुहावरे को जिस तरह से पैना बनाया है उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के स्थानीय संपादक और वरिष्ठ पत्रकार अनुपम त्रिवेदी।
बातों में जरूर आक्रामकता है लेकिन जो वोटर्स हैं उनकी बात लेते कितना सीरियस ली है, ये तो खैर इस बार जो पोल्स हो रहे हैं जिन स्टेटों में वहाँ के आउटकम से पता लग जाएगा, रिजल्ट से पता लग जाएगा। ये बात भी सही है कि उनके भाषणों से जो जोर से बढ़ते हैं तो वर्कर्स जो कांग्रेस के काफी कैडर कुछ समय से सुस्त दिखता था और उनको एक हेल्पलेसनेस नजर आती थी तो बात सुनकर वो जरूर।
लेकिन क्या कुछ दिनों की आक्रामकता से बीजेपी को परास्त किया जा सकता है? इस पर प्रेक्षकों का कहना है कि जीत से ज्यादा कांग्रेस के लिए जरूरी है अपने कैडर को एकजुट रखना और राहुल वही कर रहे हैं। अनुपम त्रिवेदी कहते हैं,
देखिए बड़ा सवाल कांग्रेस के पास ये है कि सीट जीतने से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो उनका कैडर इनके साथ जुड़ा हुआ है, पार्टी वर्कर्स जुड़ा हुआ है, वो अपने आप को ना कहीं एक उपेक्षित इस तरीके से ना महसूस करे कि यार कोई फ्यूचर नहीं है आगे हमारे पॉलिटिक्स में। तो कम से कम ये जो राहुल गांधी के जो भाषण है तो मुझे लग रहा है इस दिशा में ज्यादा है कि अपने कैडर को हमेशा गर्गनाइज कर सके, उसमें ताकत बढ़ सके, भेज बढ़ सके कि वो स्टिक रहे, उनके लिए कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती ये वो है।
चुनावों में संभावित कामयाबी और कैडरों में जोश की उम्मीद के बीच आम लोगों का एक ऐसा तबका भी है जो राहुल गांधी के बदलावों से जरा भी प्रभावित नजर नहीं आता। सुनिए अजय कुमार की खिन्नता।
अब राहुल गांधी तो कुछ नहीं, बेकार है सब कुछ, कहीं भी देखना तुम, कोई बच्चा इनका कहीं भी नहीं होगा, देख लेना आप। आखिर में कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लें, कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके अंदर वो चीज है ही नहीं भाई, कोई वो चीज है ही नहीं जो थी राजीव गांधी जी में थी और लोगों में थी, लेकिन पर अब नहीं है भाई, वो चीज कहाँ है।
ये घंटी यूं तो अजय कुमार से बातचीत के दौरान कोई साइकिल सवार बजाता हुआ गुजरा, लेकिन कांग्रेस के लिए तो ये याद दहानी से कम नहीं। शिव जोशी, बीबीसी देहरादून।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। दिल्ली के अशोकनगर से बच्चों के यौन शोषण के आरोप में सुनील रस्तोगी नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि अब तक उन्होंने 5 से 6 ऐसे मामलों का पता लगा लिया है जिनमें सुनील ने नाबालिग लड़कियों के साथ यौन दुर्व्यवहार किया। इन सभी मामलों में पीड़िता की उम्र 5 साल से 11 साल तक बताई गई है। सुनील को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बच्चों के साथ ऐसी हिंसा करने वाले व्यक्ति की मनोस्थिति क्या होती है और बच्चों को उनसे कैसे बचाया जाए, यही जानने के लिए अपराध मनोवैज्ञानी अनुजा कपूर से बात की बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य ने।
क्या चलता है एक पेडोफाइल के दिमाग में? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो पेडोफाइल है वो हम में से एक होता है और हमारी सोसाइटी के अंदर से पनपता है, तो उसकी जिंदगी में भी कभी ना कभी ऐसा कोई वो खुद एक विक्टिम रहा होता है जो एक ऑफेंडर बन जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसको उस दौरान उसको किसी ने नहीं बचाया होता, तो उसको इस बात की गारंटी रहती है कि वो भी आगे उसी तरह से आगे सेक्सुअली असॉल्ट कर सकता है क्योंकि वो उस वक्त अपने आप को मारता रहा, वो विक्टिम था। यूजुअली देखा जाता है कि जो बच्चे जो मेरे पास केसेस आते हैं वो घरों से आते हैं क्योंकि शुरुआत आपके घर से होती है,
यानी वो आदमी आपका जानने वाला होगा, उस पर आप विश्वास करते हैं, आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो आपकी ट्रस्ट को। लेकिन इस केस में, वैसे तो अभी इस केस की जानकारी बहुत ही पुख्ता नहीं है, अभी बहुत शुरुआती जानकारी है, पर अगर ये जो पेडोफाइल है ये आपके जानने वाला नहीं है, जैसा कि अक्सर ऐसे केसेस में होता है बार बार आके अलग अलग बच्चों के साथ ऐसा कर रहा है, तो क्या उसका पर्सनल हिस्ट्री के अलावा कोई और बैकग्राउंड भी मायने रखता है, पढ़ाई लिखाई या इकोनॉमिक क्लास, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता?
पेडोफाइल्स जो होते हैं वो सिर्फ एक मेल नहीं होता, वो एक फीमेल भी होती है, आप शादीशुदा भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं,
उसके बाद भी आप ऐसी हिंसा करेंगे?
जी, आप कर सकते हैं क्योंकि इससे उसको एक डोमिनेंस का फैक्टर मिलता है कि जहां पर वो सोसाइटी के सामने ये दिखता है कि वो एक आम आदमी है। आपका नॉर्मल दिखना बहुत जरूरी है सोसाइटी में ताकि आप मुझ पे विश्वास कर सके। मैं आपको ल्योर कैसे करूंगी? मेरे को ल्योर करने के लिए आपको मेरे कंफर्ट जोन में लाना बहुत जरूरी है,
और वो जो कंफर्ट जोन है, मैंने यही कह रही हूँ कि स्टार्टिंग में वो घरों से शुरू होता है और उसके बाद जब वो घर में उस चीज को रोका नहीं जाता तो वो अपने बाहर के एरिया को एक्सप्लोर करने लग जाता है। अगर एक पेरेंट के तौर पे ये समझना चाहें कि कैसे एक पेडोफाइल को स्पॉट किया जाए या कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो उनको उनके दिमाग में खतरे की घंटी बज जाए, कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे? आप देखिए कि कोई आपके घर में आपके बच्चे के, खास करके आपके बच्चे के बहुत करीब आता हो, देखता हो, आपसे बात कर रहा है, आपके साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं बना रहा पर आपके बच्चों पे बहुत ध्यान दे रहा है, उसने कपड़े कैसे पहने हैं, उसके बाल कैसे हैं, बार बार उसको छूने की कोशिश करने की बात, वो कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई बाहर का स्ट्रेंजर हो सकता है, आपके घर में काम करने वाला हो सकता है, आपको ये इस बात का एहसास बार बार दिला देना कि मैं जब बाहर आप कहीं जाएं तो आप मेरे पास छोड़ सकते हैं भाभी, आप इसको मेरे पास रख सकते हैं, मैं ध्यान रख सकती हूँ या रख सकता हूँ, ये आपका बच्चा बड़ा प्यारा है, ये उसके लिए टॉफी है। आप ये बात समझिए कि कोई आप भी बात आपसे करना चाहता है पर बात आपके बच्चे पे लाके खत्म कर रहा है, उसके कपड़ों पर बार बार सुखा, मैं बेटा मेरे को गोदी उठा लेता हूँ, मैं तुम्हें ये कर ले, तो आप ये ध्यान रखिए कि आपसे कनेक्शन के बजाय वो किसी और को कनेक्ट कर रहा है और बार बार आपके बच्चे को कनेक्ट कर रहा है। पर ये बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि बहुत से ऐसे रिश्तेदार या वेल मीनिंग फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं जो एक बहुत अच्छी मंशा से वॉलंटियर कर रहे हो बेबी सिट करने के लिए या इस तरह की कोई भी जो आपने उदाहरण दिए, वो एक बहुत थिन लाइन है जिसे कहा जाता है, वो थिन लाइन सिर्फ एक ही बारी हो सकती है, वो थिन लाइन बार बार नहीं हो सकती। बच्चे के साथ आप कैसे देख सकते हैं कि बच्चा आपका घर में ट्रॉमेटाइज्ड है, वहां पर उसके साथ कुछ हुआ है, उसके बाद आप बच्चे पे ध्यान दीजिए कि बच्चा अचानक चुप हो चुका है, बात नहीं करता, रोता है, इरिटेट बहुत होता है, खाता है या बहुत या बिल्कुल नहीं खाता है, सो जाता है या बिल्कुल नहीं सोता है, बिस्तर को गीला करना, रात में सोते सोते उठ जाना, जोर से घबराना, बड़बड़ाना, किसी के पास जाने से, स्पेसिफिक किसी बंदे के पास जाने से रोकना, मेरे को यहाँ नहीं जाना, मुझे इसके बाद नहीं जाना इस अंकल के पास या आंटी के पास, साथ वाले पड़ोस के यहाँ पर, कोई भी चीज, आप उस बच्चे पे विश्वास जरूर कीजिएगा, नहीं तो बच्चा शन आउट हो जाएगा, सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं। फिर आप उस बच्चे को सुनते हुए उसको कन्फ्रंट करना बहुत जरूरी है। देखिए हमारा लॉ संक्षिप्त है, पूरा है, एब्सोल्यूट है, और हमारा लॉ कर सकता है हेल्प, पर आपका रिपोर्ट करना जरूरी है।
अपराध मनोवैज्ञानी अनुजा कपूर से बात कर रही थी दिव्या आर्य। आज सोमवार है और आज के दिन आप इंतजार करते हैं अपने पत्रों का। आपके पत्रों के साथ हैं वंदना और राजेश जोशी।
आपकी राय, नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और वंदना का भी, मैंने आपकी तरफ से कह दिया।
नमस्कार।
चिट्ठियां हैं आपके पास, पोस्टकार्ड हैं, ईमेल हैं और आप तो हैं ही हैं।
बिल्कुल, तो शुरू किया जाए।
जी बिल्कुल।
पोस्टकार्ड हैं दो पुराने हमारे श्रोता है नागेंद्र कुमार कुशवाहा,
ये हमेशा तीन रंगीन पेन से
बाजार जिला शिवहर बिहार
पिपराही से लिख रहे हैं
जी। आज भी इन्होंने एकदम रंगीन चिट्ठी लिखी है। बिल्कुल, इन्होंने तारीफ की है जो रेहान फजल ने प्रस्तुत की विवेचना मोहन राकेश पर।
जी,
इन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि मानो रेहान फजल मोहन राकेश की नहीं अपनी प्रेम कहानी सुना रहे
हैं। ये तो रेहान फजल साहब को बता देना चाहिए।
जी,
इस तरह की चिट्ठी
और इसी तरह की तारीफ की चिट्ठियां और भी आई हैं जिसमें विवेचना को काफी पसंद किया गया।
तो ये जो चिट्ठी लिखी है ये किन्होंने लिखी है?
ये है राम तीर्थ साहब, ये भी लिखते हैं ग्राम बेलसंडी जिला समस्तीपुर। इन्होंने भी कहा कि मोहन राकेश के अनजाने जीवन के विविध पहलुओं से परिचित कराने के लिए रेहान फजल का धन्यवाद।
इन्होंने मुझे लगता है कुछ आलोचना भी की है क्या आगे, अगर आगे आप पढ़ें।
जी, ये जो जाहिर है साक्षी महाराज का जो इंटरव्यू था, कुछ उनके विवादित बयान रहे हैं कि आबादी बढ़ाने के लिए।
जी हाँ, वो इस पर काफी चर्चा हुई थी पिछले दिनों, तो वो इनका क्या कहना है कि वो ठीक नहीं था? ठीक था।
इन्होंने कुछ लंबी चौड़ी बातचीत लिखी, बोल रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ाने की रफ्तार सबसे ज्यादा घटी है पर ये अब भी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है।
अब ये न तो तथ्य इनके पास है न ये तथ्य, जब तक हमारे पास सामने न हो तब तक उस पर बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव तरीके से बात नहीं कही जा सकती है। लेकिन आपकी चिट्ठी का बहुत बहुत धन्यवाद रामतीर्थ जी। आप हमारे कार्यक्रम सुनते रहते हैं, जितनी भी सच्चाई की परतें होती हैं कोशिश करते हैं हम उन सबको सामने रखें। जी अगली चिट्ठी।
अगली चिट्ठी है अशोक कुमार ठाकुर की, ग्राम मालिटोल पोस्ट अदलपुर जिला दरभंगा बिहार की। इनको दुनिया जहान कार्यक्रम इनको काफ़ी पसंद आया, जो कि भारत रूस पाकिस्तान के जो संबंध हैं उनके इर्द गिर्द बुना गया था। इन्होंने कहा कि काफ़ी नवीनतम लगा, इनको नई जानकारियां मिली कि कैसे रूस की घनिष्ठता कथित तौर पर पाकिस्तान से बढ़ रही है।
जी, हम जैसे रोज़ाना की खबरें होती हैं वो तो समाचारों में आप सुनते ही हैं, लेकिन दुनिया जहान का जो मकसद है वो सिर्फ इतना ही है कि इस कार्यक्रम के बहाने जिस मुल्क के बारे में, जिस देश के बारे में बात हो रही हो, उसका इतिहास, उसकी राजनीति, उसका समाज, संस्कृति, उसकी भी थोड़ी झलक हम दे सकें।
बिल्कुल। और अब कुछ ईमेल्स ले लेते हैं।
जी।
ये जो ईमेल है ये भेजा है दिल्ली से रामदास शिवहरे ने। ये लिखते हैं कि मैं नेत्र बाधित हूँ और फिलहाल जापान में हूँ और आपके कार्यक्रम इंटरनेट पर सुनता हूँ।
इन्होंने लंबी सी चिट्ठी अंग्रेजी में लिखी,
काफी आपका आपसे ही सवाल पूछा है। मैं राजेश जोशी से सवाल पूछना चाहता हूँ और वो दिल पर हाथ रखकर जवाब दे।
बिल्कुल, आप गवाह है वंदना जी, दिल पे मैंने हाथ,
मेरा भी हाथ चला गया,
आपका भी हाथ दिल पे चला गया जी।
क्या 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम के कार्यक्रम में खबरें, इंटरव्यू, विश्लेषण ठीक से कवर किए जा सकते हैं?
अब इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, मैं इस सवाल का जवाब दे देना चाहता हूं। देखिए, 30 मिनट का कार्यक्रम ही नहीं, 24 घंटे भी अगर हम कार्यक्रम चलाएं या रेडियो लाइव रखें जैसा टीवी होता है, तब भी दुनिया भर की खबरें, विश्लेषण हम समेट नहीं सकते हैं। ये बात, इस बात का एहसास हमें बहुत अच्छी तरह से है। लेकिन जो 30 मिनट हमें सुबह और 30 मिनट शाम मिले हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि उसमें एक पूरा स्पेक्ट्रम दे दिया जाए, जो इंद्रधनुषी रंग होते हैं खबरों के और बहसों के, विश्लेषण के, वो सब आप
सागर में जो गागर वाली बात,
गागर में सागर
जी उल्टा हो गया,
गागर में सागर भरने की कोशिश हम करते हैं
जी। और जिशान नैयर जो लिखते रहते हैं, इनका कहना है कि कार्यक्रम,
गांव का नाम अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप बहुत नाराज हो जाएंगे,
बेगूसराय बिहार के
तरैया गांव से जी।
कार्यक्रम साफ सुनाई नहीं देते और गांव के बुजुर्ग इनसे शिकायत करते हैं, कह रहे हैं कि मैं तो सुन लेता हूं आई प्लेयर वगैरह पर, वेबसाइट पर
कार्यक्रम साफ सुनाई नहीं देते हैं।
जिशान
साहब, यही आप ही की शिकायत नहीं है, बहुत सारे लोगों की शिकायत है। और आज ही मैंने, यकीन कीजिए, ये आपकी तमाम शिकायतों का पुलिंदा एक इकट्ठा करके लंदन में हमारे जो साथी हैं जो ट्रांसमिशन की तकनीकी पक्ष को देखते हैं उन तक भेज दिया है। और आपने जो आखिर में ये बात कही है कि मैं तो आई प्लेयर पर या इंटरनेट पर प्रोग्राम सुन लेता हूँ, मेरी गुजारिश यही है कि अगर आपके पास इंटरनेट है तो वो ज़्यादा बेहतर माध्यम है सुनने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंटरनेट पर ही सुनिए, रेडियो पर आप, जाहिर है रेडियो तो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर सुनिए, लेकिन जिनको सुविधा उपलब्ध है अगर आप इंटरनेट पर सुनेंगे, हमारी वेबसाइट पर सुनेंगे, तो आपको साफ साफ सुनाई पड़ेगा
जी। तो अब एक और तारीफ की ईमेल
जी, बिल्कुल तारीफ भी एकदम बहुत।
आफ्ताब अंसारी का ईमेल है और कहते हैं कि संदीप सोनी जब इंडिया बोल कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे तो लग रहा था वो कोई भूगोलवेत्ता हो,
भूगोलवेत्ता
एकदम कोने कोने की, उनको भारत के कोने कोने की जानकारी थी। जब भी श्रोता कुछ जिले का नाम बता रहे थे वो तपाक से बता देते थे कि
किस राज्य का है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने भी सुना वो कार्यक्रम, और संदीप सोनी ने बहुत अच्छी ढंग से उस बहस को आगे बढ़ाया था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह कार्यक्रम सुनते रहिए और जो हमारे नए साथी हैं उनका हौसला बढ़ाते रहें, हम तो यही कहेंगे
जी। और आपने जो इंटरव्यू किया था आबिद सूरती साहब का, डब्बू
जी
भी थे,
कार्टून उसको
भी, वो भी इन्हें काफी पसंद आया
जी। बहुत बहुत धन्यवाद आबिद सूरती साहब, यहाँ आए, हम तो अपने बचपन के साथ जोड़कर उसे देखते हैं उनके कार्टून को। आपको भी लेकिन बातचीत पसंद आई, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है आप, समय ज्यादा नहीं है तो चलते चलते आप कहें वंदना जी तो पता बता दें।
बिल्कुल, पता तो सबसे पते की बात है।
तो सबसे पते की बात पहले ये कि इंटरनेट का पता नोट कीजिए, अगर आप ईमेल लिखना चाहें तो लिखें hindi.letters@bbc.co.uk पे, और अगर चिट्ठी लिखना चाहें, पोस्ट कार्ड अंतरदेशी भेजना चाहें तो पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003।
नमस्कार।
और अब चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के विवाद और उसके चुनाव चिन्ह को लेकर अखिलेश यादव धड़े के पक्ष में फैसला सुनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 149 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। परमाणु हथियार कम करने से जुड़े समझौते को लेकर अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव पर रूस ने कहा है कि अभी इस पर प्रतिक्रिया देना जल्दीबाजी होगा। जर्मनी के वाइस चांसलर जिगमाल गाब्रियल ने कहा है कि मध्य पूर्व में अमेरिका के लापरवाही भरे हस्तक्षेप की वजह से प्रवासी संकट खड़ा हुआ है। तुर्की का एक कार्गो विमान किर्गिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई। चीन में फुटबॉल से जुड़े अधिकारियों ने देश में होने वाली सुपर लीग में विदेशी खिलाड़ियों की संख्या पर पाबंदी लगा दी है। बीबीसी समाचार।
दिनभर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।